अध्याय 5 राई के बीज के समान। यह अध्याय मत्ती 13 आयत 31-32, मरकुस 4 आयत 30-32, लूका 13 आयत 18-19 पर आधारित है। मसीह के उपदेश को सुनने वाली भीड़ में कई फरीसी थे। इन पर ध्यान नहीं दिया गया कि कैसे उनके कुछ सुनने वालों ने उन्हें मसीहा के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने खुद से सवाल किया कि व्याख्या करने वाला शिक्षक इज़राइल को सार्वभौमिक प्रमुख कैसे दिला सकता है। धन, शक्ति या सम्मान के बिना वह नया राज्य कैसे स्थापित कर सकता था। मसीह ने उनके विचारों को पढ़ा और उन्हें उत्तर दिया। हम ईश्वर के राज्य की तुलना कहां कर सकते हैं या किस तुलना के साथ हम इसकी तुलना करेंगे? सांसारिक सरकारों में ऐसा कुछ भी नहीं था जो अनुकरण के लिए तिल तिल कर चलता है। कोई नागरिक समाज उसे एक प्रतीक दे सकता था। यह सरसों के बीज का एक दाना है, उन्होंने कहा, जब यह पृथ्वी पर बोया जाता है। हालांकि पृथ्वी पर मौजूद सभी बीजों से कम होता है, फिर भी यह जब बोया जाता है बड़ा होता है और इससे अधिक होता है, सभी जड़ी बूटियों की तुलना में, और महान शाखाओं को बाहर कर दिया ताकि स्वर्ग के पक्षी छाया के नीचे रह सकें। बीज में कीटाणु जीवन तत्व को प्रकट करता है जिसे ईश्वर ने प्रत्यारोपित किया है। इसका विकास मानव शक्ति पर निर्भर करता है। तो ये मसीह के राज्य के साथ है। यह एक नई रचना है। विकास के अपने सिद्धांत उन लोगों के विपरीत है जो इस दुनिया के राज्यों पर शासन करते हैं। सांसारिक सरकारें शारीरिक बल द्वारा प्रबल होती है, वे युद्ध द्वारा अपना प्रभुत्व बनाए रखते हैं, लेकिन नए राज्य का संस्थापक शांति का राजकुमार है। पवित्र आत्मा शिकार के भयंकर जानवरों के प्रतीक के तहत सांसारिक राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन मसीह ईश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को दूर करता है। यूहन्ना 1:29। उनकी सरकार की योजना में अंतरात्मा को मजबूर करने के लिए क्रूर बल का कोई रोजगार नहीं है। यहूदियों ने परमेश्वर के राज्य को दुनिया के राज्य के रूप में स्थापना की गई थी। धार्मिकता को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बाहरी उपायों का सहारा लिया, लेकिन मसीह एक सिद्धांत का आरोपण करता है। सच्चाई और धार्मिकता का आरोपण करके वह त्रुटि और पाप का प्रतिकार करता है। जैसे कि यीशु ने इस दृष्टांत को बताया, सरसों के पौधे को दूर और निकट से देखा जा सकता है। घास के दाने को ऊपर उठाकर और हवा में अपनी शाखाओं को हल्के से लहराते हुए, पक्षी टहनी से टहनी की ओर जाते हैं और पत्तेदार पत्ते के बीच गाते हैं, फिर भी जिस बीज से यह विशालकाय पौधा निकला वह सभी बीजों में से कम था। सबसे पहले इसने एक निविदा शार्ट को भेजा, लेकिन यह मजबूत जीवन शक्ति का था और तब तक फला फूला जब तक कि यह अपने वर्तमान महान आकार तक नहीं पहुंचाया गया। इसलिए अपनी शुरुआत में मसीह का राज्य विनम्र और महत्वहीन था। सांसारिक राज्यों की तुलना में यह सभी में से कम दिखाई दिया। इस दुनिया के शासकों द्वारा मसीह के राजा होने के दावों का मजाक उड़ाया गया था। अभी तक अपने अनुयायियों के लिए किए गए शक्तिशाली सत्य में सुसमाचार का राज्य एक दिव्य जीवन था। इसका विकास कितना तेजी से हुआ, इसका कितना व्यापक असर हुआ। जब मसीह ने इस दृष्टांत को देखा तो बाएं राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए केवल कुछ गलीली किसान थे। उनकी गरीबी, उनकी संख्या की कमजोरी को फिर से एक विचारक के रूप में आग्रह किया गया था कि एक कारण के रूप में पुरुष खुद को इन सरल दिमाग वाले मछुआरों से नहीं जोड़ते हैं जो यीशु का अनुसरण करते हैं। लेकिन वो राई के बीज को दुनिया भर में अपनी शाखाओं को विकसित और फैलाते था। जब सांसारिक राज्य, जिनकी महिमा फिर पुरुषों के दिलों में भर जाती है, को नष्ट कर देना चाहिए, तो मसीह का राज्य एक शक्तिशाली और दूरगामी शक्ति बना रहेगा।
तो दिल में अनुग्रह का काम शुरुआत में छोटा है। एक शब्द बोला जाता है, प्रकाश, जो एक किरण को आत्मा में बहाया जाता है। एक प्रभाव डाला जाता है जो नए जीवन की शुरुआत है, और इसके परिणाम को कौन माप सकता है? न केवल सरसों के बीज के दृष्टांत द्वारा मसीह के राज्य की वृद्धि को दर्शाया गया है, बल्कि इसके विकास के प्रत्येक चरण में दृष्टांत में दर्शाए गए अनुभव को दोहराया गया है। हर पीढ़ी में उस कलीसिया का परमेश्वर एक विशेष सत्य और एक विशेष कार्य है। सत्य का सिद्धांत सांसारिक बुद्धिमानों से छिपा रहता है और विवेकमान बच्चे के समान और विनम्र होता है। ये आत्मा बलिदान के लिए कहता है। इसमें लड़ने के लिए और जीतने के लिए जीत है। शुरुआत में इसके अधिवक्ता कम है। दुनिया के महापुरुषों द्वारा और विश्व अनुरूप कलीसिया द्वारा उनका विरोध और तिरस्कार किया जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह के अग्रदूत को देखे, जो राष्ट्र के गौरव और औपचारिकता का खंडन करने के लिए अकेला खड़ा है। यूरोप में सुसमाचार के पहले वाहक देखे, कितना अस्पष्ट, कितना निराशाजनक पौलुस और सिलास का मिशन लग रहा था। दो तंबू बनाने वाले, क्योंकि वे अपने साथियों फिलिप के लिए दुआस में भी जहाज पर थे। सीर्जस के गढ़ में मसीह का प्रचार करते हुए जंजीरों में पौलुस एक बुजुर्ग को देखे। साम्राज्य रोम के कट्टरवाद के साथ संघर्ष में दासों और किसानों के छोटे समुदायों को देखे। मार्टिन लूथर को समझे कि शक्तिशाली कलीसिया जो दुनिया के ज्ञान का एक बड़ा केंद्र है, उसे सम्राट और पाप की तेजी से ईश्वर के शब्द को पकड़े देखे। घोषणा करते हुए कहा, मैं अपना कदम लेता हूं, मैं अन्यथा नहीं कर सकता, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। जेम्स वेस्ली को औपचारिका, कामुकता और बेवफाई के बीच मसीह और उसकी धार्मिकता का प्रचार करते हुए देखा गया। एक को मिट्टी की दुनिया के बोझ से दबे हुए लोग देखे, उन्हें मसीह के प्रेम के संदेश को ले जाने के विशेषाधिकार के लिए विनती करना है। सनकीपन की प्रतिक्रिया सुने, बैठो। युवा जब ईश्वर मूर्ति पूजकों का परिवर्तन करेगा तो वो बिना किसी की सहायता से करेगा। इस पीढ़ी में धार्मिक विचार के महान नेता ध्वनि की प्रशंसा करते हैं, जो सदियों पहले सत्य का बीज बोने वाले धर्म ग्रंथों के निर्माण की प्रशंसा करते हैं। आज एक ही बीज से विकास बसंत को रौंदने के लिए इस काम में कई मोड़ आते हैं। पुराना रोना दोहराया जाता है। हम जानते हैं कि ईश्वर मूसा की ओर इशारा करता है, जैसा कि इस साथी के लिए मसीह दूत में भेजता है। हम जानते हैं कि वो कहां से है। वहां यूहन्ना 9 आयत 29 पूर्व के युगों में इस समय के लिए विशेष सत्य पाए जाते हैं नहीं। सनकी अधिकारियों के साथ, लेकिन उन लोगों और पुरुषों के साथ जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के लिए ना तो बहुत सीख गए और ना ही बहुत बुद्धिमान हैं। क्योंकि तुम अपने बुलावे को देख रहे हो भाइयों, न जाने कितने बुद्धिमान लोग हैं, ना कि बहुत से पराक्रमी, न जाने कितने महान कहलाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने बुद्धिमानों को भ्रमित करने के लिए दुनिया की मूर्खतापूर्ण चीजों को चुना, और परमेश्वर ने कमजोरों को चुना जो दुनिया की चीजें शक्तिशाली है, उन्हें भ्रमित करने के लिए और दुनिया को चीजों को आधार बनाए, और जो चीजें तिरस्कृत हैं चुने हुए है, जो चीजें नहीं हैं वे शून्य चीजें लाने के लिए है। पहला कुरंथियों 1 आयत 23-28। ये कि आपका विश्वास पुरुषों की बुद्धि में नहीं है बल्कि ईश्वर की शक्ति में होना चाहिए। नीति वचन 2 आयत 5। और इस अंतिम पीढ़ी में सरसों के बीज का दृष्टांत एक संकेत और विजय पूर्ति तक पहुंचता है। छोटा बीज वृक्ष बन जाएगा। चेतावनी और दया का अंतिम संदेश, हर देश और दयालु और जीभ पर जाना है। प्रकाशित वाक्य 14 आयत 6-4। उनके नाम के लिए लोगों को बाहर निकाले। प्रेरितों के काम 15 आयत 14। प्रकाशित वाक्य 14 आयत 6-14। उनके नाम के लिए लोगों को बाहर निकालना है। प्रेरितों के काम 15 आयत 14। प्रकाशित वाक्य 18 आयत 1। और पश्चवी उसकी महिमा से हल्की होगी।